अपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने ओ प्रभु क्या कहने।
दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने ओ प्रभु क्या कहने।
आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने ओ प्रभु क्या कहने।
दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने ओ प्रभु क्या कहने।
राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे।
जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने।
आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। मधुर मनोहर है सुना रहा है वो मुरली, मधुर मनोहर है।
राजे हंसी बता दिया है, अपने क्या कहने।
आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने।
ओम शांति। कहाँ से शुरू करें? आपने प्रभु अपना बना लिया है तो और क्या कहने। तो आज की मुरली में इसी सेंटेंस से संदर्भित तीन शब्द थे। अगर वो हम याद रखेंगे तो जीवन में खुशी भी रहेगी, शक्ति भी रहेगी और नशा भी रहेगा। तो वो कौन से तीन शब्द थे? याद, शक्ति। नहीं, वो तीन शब्द याद रहेंगे तो जीवन में खुशी भी रहेगी, शक्ति भी रहेगी और नशा भी रहेगा, जिसकी हम तलाश में रहते हैं सभी, है ना। तो कौन से तीन शब्द थे? इधर से आवाज आ रही। हाँ, एक है पहले जानना, जानेंगे तो बाबा कितनी सूक्ष्म खुशी रहेगी। दूसरा है मानना। तीसरा है उस पर चलना। तो हम भगवान को जान गए तो खुशी रहती है, लेकिन उस खुशी में शक्ति हो तो उसके बाद उसको मानना, अर्थात उसकी मानना जो वो कहता है। और तीसरा है नशा। नशा तब रहेगा जब हम उसकी श्रीमत पर चलते हैं, मानकर चलना। तो वास्तव में जिंदगी में इन तीन शब्दों पर ही हमारा पुरुषार्थ रहता है। हम किसी के बारे में जानते हैं वो केवल इतना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ संबंध संपर्क बढ़ाने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए फिर उसको मानना पड़ेगा, उसकी माननी पड़ेगी। फिर जो वो कहता है उस पर चलेंगे तो उससे कुछ प्राप्ति होगी, नशा होगा। तो ये तो है बाबा के बारे में जानना। और कौन सी तीन बातें ऐसी हो सकती हैं? एक है बाबा को जानना, दूसरा है अपने आप को जानना। हमें अपना भी तो ज्ञान मिल गया ना, भगवान ने ज्ञान दे दिया, हम स्वयं कौन है स्वयं के बारे में जानना अच्छी तरह से। फिर दूसरा है उसको मानना, कौन है हम सभी आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं आत्मा समझ कर मुझे याद करो। तो दूसरी बात है उसको मानना, तीसरी बात है उस पर चलना, आत्मा समझकर चलते कितना है, आत्मा समझकर देखते कितना है। भले इन चर्म चक्षुओं से तो शरीर ही दिखाई देता है, लेकिन वो कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं है, चंचलता से मुक्त हैं। तो ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जानना, मानना और उस पर चलना अच्छी तरह से। यही तीन बातें फिर ड्रामा के ऊपर भी लागू हो सकती हैं। आज बाबा ने बोला ना, याद को रमणीक बनाने के लिए मनन चिंतन करो, मनन करो। तो मनन को बढ़ाना है तो ड्रामा की भी तीन बातें। ड्रामा को हम जान गए हैं, उसके बारे में हमको पता है, ये ड्रामा बना बनाया है, वो रिपीट हो रहा है, इसमें हर आत्मा का अपना अपना रोल है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, ये तो हम जान गए। फिर उसको मानते कितना है, जब कोई समस्या आती है, परिस्थिति आ जाती है, उसको हम मानते कितना है, फिर उस पर चलते कितना है। तो ये तीन बातें थी आज की मुरली में, अधिकतर तीन तीन बातों पर ये सारी मुरली, जानना, मानना और उस पर चलना, ये तीन बातें थी। जितने भी मुरलियाँ चलती हैं उन पर अगर हम थोड़ा भी गौर नहीं करते हैं, थोड़ा भी अगर करें, थोड़ा भी बहुत भी करें, तो भी हमारे जीवन में परिवर्तन महसूस होगा। अगर सुनकर छोड़ देते हैं तो बाबा ने आज मुरली में कहा ना कि 6-8 घंटे निकल जाते हैं, फिर बाद में क्या होता है, उदासी, क्योंकि शाम के टाइम या जब पूरे दिन कर्म कॉन्शियस हम रहते हैं, फिर जब भी हमको मौका मिलेगा थोड़ा भगवान की याद आएगी, फिर उदासी आएगी, क्यों 6-8 घंटे तो हमारे ऐसे ही निकल गए। फिर वो शाम या सवेरे के युग में उतना नशा नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में हमारा बहुत लंबा गैप पड़ गया, और फिर उसको मेंटेन करने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास इतना शक्तिशाली नहीं होता है, क्योंकि सारे दिन में हमने आत्मा को खुराक बुद्धि नहीं है, अपने सिद्धांतों से, अपने नियम से, अपने मर्यादाओं से थोड़ा हम किनारे रहे हैं। फिर हम ढूंढते हैं सहारा, तो सहारा तो सवेरे भगवान मुरली में बहुत सारे सहारे पकड़ा के जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम दूसरे सहारे पकड़ते रहते हैं, चाहे वो मन से पकड़ा हुआ है, दृष्टिवृत्ति से पकड़ा हुआ है, संबंध संपर्क से पकड़ा हुआ है, तो हमारा मन कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। तो बड़ा सूक्ष्म है ये, सूक्ष्म मनोविज्ञान मुरली का जो है। तो आज कौन किसको देख रहा है, बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं, कौन से बाप दादा कौन से बच्चों को देख रहे हैं, वाह, हाँ, विदाता और वरदाता, बाप अपने मास्टर विदाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। अगर हम इसी लाइन पर थोड़ा रुक जाएं तो विदाता अर्थात है जी भाग्य रचने वाला, और जो विधि विधान बनाने वाला है, नियम कानून, पूरी सृष्टि के जो नियम कानून इस समय ही सारे बन रहे हैं, तो वो टाइटल स्वयं भगवान ने हमको दे दिया। यहाँ हम कोई उस तरह लिखते नहीं है जैसे संसार में संविधान लिखा जाता है, नियम बनाए जाते हैं, यहाँ तो वैसे हम लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ स्वतः लिखा जा रहा है हमारे कर्मों से, हमारे संकल्पों से, हमारे बोल से, चाल चलन से, चरित्र से, दृष्टि से, वृत्ति से संविधान का निर्माण हो रहा है। तो नए नियम जो संसार को, जो नियम पूरे कल्प में लागू रहेंगे, इन संसार के नियम तो बदलते रहते हैं, जैसे सरकार नई आती है तो नियम भी बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ वाले नियम पूरे कल्प चलते हैं। बाबा ने कहा ना स्वर्ग में भी और फिर द्वापर युग में भी, पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना कि अभी के जो विधि विधान है वो सत्ययुग में कैसे परिवर्तन होते हैं, अभी के उसकी 9 बातें बताई थी पिछले मुरली में संडे की, कौन कौन सी, ये बनेंगे तो ये होगा, और उसका प्रभाव अभी भी पड़ेगा। हाँ, एक वो था जिसमें बाबा ने तकदीर की तस्वीर देखी थी बच्चों की, विषय रचयिता बाप ने अपने तकदीर मान बच्चों की तकदीर की तस्वीर देखी। तो उसमें एक तो ये था कि हम सतो प्रधान है तो विषव सतो प्रधान है, हम गिरती कला में विश्व गिरती कला में, हम चढ़ती कला में विश्व चढ़ती कला में, हम सो रहे हैं तो विश्व सो रहा है, हम जाग रहे हैं तो विश्व जाग रहा है, हम दुख में हैं तो विश्व दुख में है। तो सारा हमारे ऊपर कितना बड़ा आधार है, पूरे संसार जो सृष्टि है भगवान ने हमारे सिर के ऊपर रख दी, लेकिन हम भूले पड़े हैं उसके कि हमारे सिर पर कुछ भगवान ने रखा भी हुआ है, कुछ कुछ और ही उठाते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा और 9 बातें बताई थी बाबा ने, कहा था जितना तुम यहाँ देह से डिटैच होंगे उतना क्या होगा, वो अशरीरी का था, जितना यहाँ थोड़ा आगे आगे आ जाएंगे बहन माते सभी, जितना यहाँ देह से डिटैच होने का अभ्यास करेंगे उतना उतना तंदुरुस्त रहेंगे, उतना तंदुरुस्ती का अनुभव करेंगे, और जितना अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे उतना उतना निरोगी और लंबी आयु, और वो निरोगीपन और लंबी आयु का एहसास भी अब भी हम अनुभव कर सकते हैं। जब भी हम अशरीरी अवस्था में बैठते हैं तो सभी महसूस करते होंगे हमारे श्वासों की गति बहुत धीमी हो जाती है, बहुत ही धीमी हो जाती है, अर्थात हमारी उम्र बढ़ जाती है, इस शरीर की उम्र बढ़ जाती है, आत्मा की उम्र बढ़ जाती है, और दूसरा निरोगी हो जाते हैं, अर्थात क्योंकि अशरीरी अवस्था में आत्मा अपनी चर्म शक्तियों की जो शक्ति संपन्न की जो चर्म सीमा है उसमें स्थित हो जाती है, क्योंकि अशरीरी अर्थात परम धाम की अवस्था है, तो उस अवस्था से हमारी बॉडी पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा देह की तरफ फिर ध्यान नहीं जा रहा है, देह में केवल परमात्म शक्तियां या आत्मिक शक्तियों का समावेश हो रहा है, तो अशरीरी अवस्था से हम निरोगी बनते हैं और लंबी आयु होती है। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी एक तो बॉडी के हिसाब से लंबी आयु होगी, दूसरा ब्राह्मण जीवन में भी हम लंबी आयु जिएंगे, अर्थात खंड खंड नहीं होगा, स्मृति विस्मृति का खेल नहीं चलेगा ज़्यादा, अगर होगा भी तो जल्दी उसको गलप कर लेंगे। तो लंबे समय तक हम निरोगी भी रह सकते हैं अगर देह से डिटैच होने का अनुभव करेंगे तो तंदुरुस्त भी रहेंगे, अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे तो निरोगी रहेंगे और लंबी आयु होगी। और क्या बताया था, जितना यहाँ ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न होंगे उतना वहाँ हर चीज में संपन्न होंगे, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण बच्चे कभी भूखा नहीं मर सकते यदि ज्ञान से संपन्न है तो। जिस आत्मा के पास ज्ञान का खजाना संपन्न है उसके पीछे दूसरे सारे खजाने आकर्षित होके आएंगे। तो अपने आप को जितना भी हमको समय मिलता है तो खजानों से संपन्न करने का मौका नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हमारी है गोल्डी स्टूडेंट लाइफ, परसों के मुरली में था तो हमको कितना स्मृति में रहता है, कल की मुरली में आने वाले मुरली में, ये है यूनिवर्सिटी कौन सी है जी, ईश्वर यूनिवर्सिटी आने वाले मुरली में है कल गोल्ड यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी है सारे प्रकृति के पांचों तत्वों को परिवर्तन करने वाली यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते होंगे वो कितने बड़े होंगे, तो कितना अटेंशन रखना पड़ेगा प्रज्ञा। तो हम साधारण आत्मा नहीं है, पहले अपने को जानना फिर उसको मानना है। जितने भी बाबा हमको टाइटल देते हैं उन टाइटल को हमें मानकर महसूस करना है उसको, क्योंकि जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन की जो गति है बहुत धीमी रहेगी, बदलाव दिखेगा नहीं, फिर धीरे धीरे जीवन में हमारी ज्ञान से दूरियां बढ़ती जाती हैं, योग से दूरियां बढ़ती जाती हैं, तो हमको अपने आप को स्वयं को खजानों से संपन्न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, बहुत समय निकल गया है। हम सब तो इतने सौभाग्यशाली हैं जो कम से कम भगवान की हमारे पर दृष्टि पड़ी, ये ज्ञान समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी खूबी तो है, जैसे पहले हम कई बार जिक्र करते हैं कि अपनी विशेषताओं को भी देखना है, तो सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि हम सबको ये ज्ञान समझ में आ रहा है, तो ये हमारे ऊपर भगवान की बाबा की कृपा दृष्टि है, उसका आशीर्वाद है कि हम ज्ञान के प्रति थोड़ा रुचि तो बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं कि हम तबाही होकर बैठे हुए हैं, बाबा कई बार जिक्र भी करते हैं तो जांच करना अपने आप, क्योंकि ज्ञान को सुनना बहुत बड़ी साधना है। ये भी मुरली में पूरा उपस्थित होके बैठना, मन को पकड़ के बैठना, ये बहुत बड़ी साधना है। केवल साधना योग में बैठे साधना नहीं है, मन हमारा कहीं और ही बट रहा है। साधना अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं उसे पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से, पूरी ताकत झोंक दें उसमें, अर्थात वहाँ हमारा पूरी एनर्जी लग जाए, वहाँ से हमको सिद्धि स्वरूप आत्मा बन के बाहर निकले। हम आज बाबा ने कहा ना सिद्धि स्वरूप आत्मा है, जो सिद्धि स्वरूप आत्मा होंगी कभी ये नहीं सोचेंगे, क्या क्या नहीं सोचेंगे आज की मुरली में था, पता नहीं क्या होगा, हाँ और ये भी था, ये भी था, ये दूसरे पैराग्राफ में, लेकिन ये भी चलेगा, ठीक है ये भी होता है, क्योंकि ज्ञान तो सारा ठीक ठाक है, कुछ भी बोलो सब ठीक ही है। तो सिद्धि स्वरूप आत्माएं ये नहीं सोचेंगे कि मैं इतना पुरुषार्थ करता हूँ, मेहनत करता हूँ, सिद्धि तो मिलती नहीं है, नहीं, सिद्धि स्वरूप आत्माएं अर्थात हर बात में सफलता का वो अनुभव करेंगी। तो आज की मुरली को मुख्य हेडिंग क्या थी, 1988 की मुरली है 19 मार्च, तो मुख्य हेडिंग क्या था मुरली का, हाँ याद में रमणीकता की युक्तियां, है ना। तो अभी बताओ आप याद में रमणीकता कैसे हो सकती है, हाँ हाँ माना अलग अलग तरीके से मुरली से वरदान है, वैरायटी है, वैरायटी की बाबा ने बात की है, अगर रोज एक एक सब्जी खाते हैं तो क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं ना, तो ऐसे एक कितने सारे बाबा ने हमको सोमान दिए हुए हैं, तो लेकिन उनको थोड़ा रमणीक लाना, तो कैसे, क्योंकि लंबे समय तो हम सुनते आते हैं मैं मास्टर साहब शक्तिवान आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, लेकिन रमणीकता कैसे लाएं उसमें, क्या करें उसमें, हाँ जी फीलिंग करें, और बिल्कुल सही बात है, फीलिंग फीलिंग भी के लिए क्या करें, फीलिंग भी आए तो उसके लिए क्या करें, गहराई में जाएं, कितना गहराई में, जहां से बाहर ही ना आ सके, जो भी कर्म करें वो भगवान की याद में करें। और तो जैसे आज की मुरली में था, हाँ जी उसको अनुभव करना, हाँ अनुभव करने के लिए तो वही कैसे करें उसका अनुभव, अनुभव तो नहीं होता है, सारा तो खेल अनुभव का ही है, हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं किस लिए, अनुभव करने के लिए तो करते हैं ना। तो आज की मुरली में जो हमने थोड़ा सोचा उसके ऊपर और थोड़ा महसूस भी किया और शाम के योग में उसका भी अनुभव किया, तो मुरली में आज जितने टाइटल हैं पहले तो वो याद करने पड़ेंगे, है ना। बाबा ने कहा ना रोज जो मुरली चलती है उस मुरली के आधार पर आप अपना चिंतन करो, मनन करो। तो मुरली जो चलती है उसके डेली के मुरली के अलग अलग टाइटल निकाल देने और उन टाइटल के ऊपर योग का अभ्यास करना है। जैसे आज की मुरली में कौन कौन से टाइटल थे, हाँ जी हाँ, विदाता, वरदाता, विधि विदाता, और पहले टाइटल याद करते हैं, और कौन से टाइटल थे, बहुत टाइटल थे आए तो, मास्टर बीज रूप, विश्व कल्याणकारी, अव्यक्त फरिश्ता, और नूरे रतन, और हाँ जी हाँ, और सिद्धि स्वरूप, और विधि से सिद्धि, और क्या था, और भी थे, लाइटोस, माइटोस, सर्वशक्ति संपन्न वरदान में लास्ट में था लाइटोस माइटोस, है ना। सृष्टि चक्र के वृक्ष के ऊपर बैठे हो तुम, पूर्वज हो, सृष्टि चक्र के ऊपर बैठ जाओ, सृष्टि चक्र के ऊपर कौन बैठा हुआ, सृष्टि चक्र देखा होगा सभी ने, तो उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, कहाँ पर है सृष्टि चक्र, इधर है, उमा बाबा बैठे हुए, तो उनके पास में बैठ जाना, उनके दोनों के बीच बैठ जाना ना, योग में रमणीकता लानी है ना अपने को, तो थोड़ा मम्मा बाबा को थोड़ा साइड करना पड़ेगा ना, जैसे हम वहां एंटर करेंगे तो थोड़ा इशारा करेंगे ना ऐसे, तो थोड़ा उनको जगह बना लेंगे, है ना, जैसे सोफे पर आते हैं माताएं या भाई कोई भी आते हैं तो थोड़ा इशारा करते हैं ना, बोलते नहीं है ना, तो बाबा समझ जाएगा कि बच्चा योग करने आया है ना, तो सृष्टि चक्र में दोनों के बीच में बैठ जाना तो रमणीकता आ जाएगी। तो ये जितने भी टाइटल हैं, मान लीजिए 12 टाइटल है आज के मुरली में, तो 12 टाइटल पर एट ए टाइम योग करना, है ना। कैसे करेंगे, 12 फरिश्ते क्रिएट करने हैं, क्योंकि एक में भावने का बोर हो जाते हैं, तो कुछ तो नवीनता लानी पड़ेगी। तो 12 फरिश्ते क्रिएट कर लें और 12 फरिश्ते अलग अलग स्थानों पर, जैसे आज बोला तुम प्रदाता हो, ठीक है, तो मैं आत्मा प्रदाता हूँ और भगवान ने स्वयं मुझको टाइटल दिया है प्रदाता हूँ, अर्थात उसने वरदानों से मुझे भरपूर किया है, इसलिए मुझे प्रदाता का टाइटल उसने दिया है। ऐसे थोड़ा कोई दे देगा। अगर हमने हमारे में भगवान ने योग्यताएं देखी हैं तभी तो उसने हमको ये टाइटल दिया ना, तो हमारे में वो टाइटल है, मैं आत्मा वरदाता हूँ और मास्टर वरदाता हूँ और स्वयं वरदाता बाप मेरे साथ में है। तो एक फरिश्ता क्रिएट किया और उसको भेज दिया सेवा में, कहाँ, वरदान लेकर, कहाँ, मंदिरों में भेज देना। संसार में कितने मंदिर होंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कोई भी है, सभी जगह चले जाना, क्योंकि इसमें कोई रोक तोड़ सकता नहीं है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं भी जा सकते हैं। तो सब मंदिरों में, मस्जिद गुरुद्वारे में, सब जगह पहुंच जाना और वहां अपना स्थान निश्चित कर देना और वहां वरदानी मूर्त में फरिश्ता खड़ा हूँ, फिर देखना है वहां मुझ फरिश्ते से, मृत फरिश्ते के हाथ से वरदानी किरणें निकल रही हैं और वरदान निकल रहे हैं। जो भी भक्त आत्माएं आ रही हैं वो तृप्त हो रही हैं, संतुष्ट हो रही हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। पिछले संडे की मुरली में था, तुम हो कौन, कामधेनु, है ना, सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। सारी मनोकामनाएं कौन सी, सारी नहीं, शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। ऐसा नहीं कोई कुछ मांग रहा और हम कुछ तथास्तु बोल दे उसको, शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, कल्याणकारी कामनाएं पूर्ण करने वाले। तो एक फरिश्ता छोड़ दिया हमने और उसको बोल दिया कि अभी आधा घंटा वहीं रहने, फिर वापस आ गए। फिर दूसरा फरिश्ता क्रिएट किया, एक तो वरदान वाला फरिश्ता हो गया, दूसरा मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अब दूसरा फरिश्ता यहाँ से निकलता है विश्व कल्याण के लिए और उसको भी जैसे कमांड दी, जैसे और साथ में बाबा को हमने अपने पास में रखा हुआ है, वो जैसे हमारे साथ कंबाइंड है। जैसे बाबा मुझको कह रहा है कि बच्चे 12 फरिश्ते क्रिएट कर और इनको भेज सेवा के लिए, क्योंकि मन बुद्धि को आदत है भटकने की, तो मन बुद्धि को भटकाना और भटकाना है, लेकिन किस में, सेवा में भटकाना है। तो दूसरा फरिश्ता कौन सा क्रिएट किया, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूँ। अब यहाँ से निकले और बाहर जैसे एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं ना अपने हाथ में, सारा संगम युग में सूक्ष्म वतन बाबा ने रचा हुआ, तो हमको भी क्या करना, जो बाबा करता है वही तो बच्चे करेंगे ना। तो बाहर एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, ठीक है, और हम पायलट बन के, मैं फरिश्ता पायलट बन के आगे बैठ गया और उसको चलाने की तो जरूरत है नहीं, भी आगे टकराएगा कहीं कुछ भी है, स्विच दबाया और के, और देखना पीछे सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, खाली नहीं है, अकेला मैं फरिश्ता नहीं, सब फरिश्ते बैठे हुए और परिक्रमा विश्व परिक्रमा पर निकल गए, ठीक है। तो विश्व परिक्रमा करनी है और उसको भी बता दिया कि आधे घंटे से पहले आना नहीं है, अच्छी तरह सेवा करनी है सबकी, ठीक है। तो दो फरिश्ते हुए, विश्व कल्याणकारी और वरदाता। तीसरा, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अब अव्यक्त फरिश्ता हूँ तो साथ में महसूस करना, क्या महसूस करेंगे अभी आप सुनो थोड़ा, क्योंकि विचारों में नवीनता चाहिए, रमणीकता चाहिए, रोचकता चाहिए, तो उसमें एनर्जी आएगी, नहीं तो पुराने जो विचार है, पुरानी चीज चलते 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 घिस जाती है। तो नए विचार, ऐसे कुछ जोशीले संकल्प चाहिए, एनर्जी वाले संकल्प चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर वाले संकल्प चाहिए, है ना, जिसमें कोई करंट दौड़े, कुछ कुछ करने के लिए मन में हाँ रुचि आए, हाँ ठीक है इसमें, और उसमें मन में संतुष्टता भी होगी, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा याद में रमणीकता लाओ, तो हम कर रहे हैं उसके अनुसार। तो तीसरा, मैं फरिश्ता हूँ, कौन सा फरिश्ता हूँ, अव्यक्त फरिश्ता हूँ, तो प्रकाश में कायाधारी हूँ, है ना, तो मैं प्रकाश में कायाधारी फरिश्ता उन दो फरिश्तों को देखने के लिए भेज रहा हूँ, वो दोनों सेवा ठीक से कर रहे, कुछ तो नवीनता लानी पड़ेगी ना, ऐसा देखेंगे विस्मृत हो गए, तो कितने हो गए, 3। फिर आगे कौन सा टाइटल दिया, मैं आत्मा मास्टर बीज रूप हूँ, है ना। अब मैं आत्मा बीज रूप हूँ तो ये बड़ी शक्तिशाली स्थिति है, तो बीज रूप कहाँ होता है, ये परम धाम की स्थिति है, तो उसमें अनुभव करना है जैसे बाबा ऊपर से आया और मुझे यहाँ से निकाल के ले गया, क्योंकि कई बार हमारे में ताकत नहीं होती है उठने की, बच्चा चल रहा है गिर रहा है तो कौन उठाता उसको, माँ बाप ही उठाएंगे ना, तो ऐसे देख रहा है भगवान ये प्रयास तो कर रही है, बच्चा प्रयास तो कर रहा है लेकिन ये आत्मा देह से बाहर ही नहीं निकल पा रही है, तो जैसे माँ बाप आते हैं भगवान ऊपर से आता है और हमको यहाँ से निकाल के ले जाता है और अपने साथ कंबाइंड कर लिया परम नाम में बीज रूप अवस्था में, तो उस अवस्था में सेवा करने की इतनी संकल्प नहीं आएंगे, बल्कि स्वतः वो संसार में एनर्जी फैलती रहेगी परमधाम की अवस्था पे। तो ये तीसरी अवस्था होगी बीज रूप बाप के साथ कंबाइंड, उसमें महसूसता होगी कि सारी परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा में आती जा रही हैं और मैं आत्मा फुल एनर्जेटिक हो रही है, फुल चार्ज हो रही हूँ, अद्भुत करंट अद्वितीय करंट मुझ में समाता जा रहा है और सारे जन्मों की जो है अनेक जन्मों के पाप कर्म दुख दर्द बीमारियां सब भस्म हो रहे हैं और एकदम निखार आ रहा है अंदर। देखना है कि आत्मा जैसे एक धवल अर्थात वाइट वाइट होती जा रही है, सुनहरी सुनहरी होती जा रही है, सारी कालिक जैसे उतरती जा रही है, खाद जैसे उतरती जा रही है, जैसे मैल उतरती जा रही है, एकदम हल्की हो गई है आत्मा, जैसे प्रफुल्लित हो गई है, मुस्करा रही है। जैसे आत्मा कैसे मुस्कराएगी बिना मुख के, कैसे मुस्कराएगी, मुस्कराएगी ऐसे 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 है, तो ऐसे चमक रही है, शाइनिंग दे रही है। तो ये हो गया परम नाम में बीज रूप अवस्था का योग। फिर चौथा, ये कितने हो गए, चार, देखना ज्यादा ना हो जाए। तो फिर पांचवा, पांचवा कौन सा करेंगे, लाइटोस माइटोस। तो इसमें क्या करेंगे, लाइटोस का क्या काम होता है, लाइटोस कहाँ पर होता है, समुद्र के किनारे, तो किस लिए क्यों लगाते हैं वहां, रास्ता दिखाने के लिए। वो कितनी दूर तक दिखाता है रास्ता, है कई माइल तक दिखाता है। किसको दिखाता है, शिप को, शिप को दिखाता है या जो उसमें बीच में लोग होते हैं उनको दिखाता है, उनको दिखाता है, कहने में तो ये आता है शिप को दिखाता है। तो अब हमको ही बाबा ने लाइट हाउस बनाया है, तो हमको भी रास्ता दिखाना है। किसको रास्ता दिखाना है, जो इस संसार के बेड़े में भटके हुए हैं, ये कलयुग के समुद्र में जो बेचारे भटक रहे हैं, अशांत है, दुखी हैं, देख रहे हैं संसार की हालत क्या हो रही है, कौन से मोड़ पर संसार आ पहुंचा है ना, मानव मानव के खून के प्यासा हो चुका हुआ है। तो ऐसी अवस्था में क्या हमारा कर्तव्य दायित्व क्या बनता है, जहां लाइट अर्थात प्रकाश की किरणें, उनको थोड़ा शांति शक्ति की किरणें महसूस हो कि कुछ तो हमको यहाँ से प्राप्ति होने वाली है। जैसे बाबा ने पिछले थे पिछले संडे की मुरली में कहा था लास्ट पैराग्राफ में कि हिंदू धर्म के नाम से थोड़ा सा ये समझते हैं, लेकिन आदि सनातन देव देवता धर्म को सभी सम्मान देते हैं, है ना। तो हम सब उस आदि सनातन देव देवता धर्म की मूल आधार हैं, फाउंडेशन हैं। तो ये भी महसूस करना कि हम लाइट हाउस माइट हाउस हैं। तो जितने भी संसार में जितने भी समुद्र में लाइट हाउस लगे हुए हैं सब जगह चले जाना। अब उसकी पहले गिनती भी करनी पड़ेगी कितने लगे हुए हैं, उसके ज़्यादा भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो सोचना है कि जैसे समुद्र के किनारे में लाइट हाउस खड़ा, वहीं चले जाना और मुझसे परमात्म शक्तियों की लाइट निरंतर निकलती जा रही है और मैं बहुत बड़ा लाइट हाउस बन गया हूँ। तो एक फरिश्ता लाइट हाउस के पास में खड़ा कर देना और तीसरे नंबर के फरिश्ते को बोला हुआ है कि सबको देखते रहना, है ना। तो वो देखता रहेगा कि सेवा हो रही कि नहीं हो रही है। तो ये कितने फरिश्ते हो गए, तीसरे वाले को पूछो कितने हुए, सबसे पहला कौन था, हम खुद ही भूल गए हमने कितने भेजे हुए हैं, कि हमारे परिवार के मेंबर कितने हैं यही भूल जाए तो क्या हालत होगी फिर। एक बरदाता हो गया, दूसरा पिशव कल्याणकारी, तीसरा अव्यक्त फरिश्ता, चौथा बीज रूप, पांचवा छठा नहीं बताया, हाँ तो तीसरा कौन सा था, अव्यक्त फरिश्ता। उसकी ड्यूटी क्या है, सबको देखने की ड्यूटी है। तो ये हो गए पांच, फिर छठा कौन सा है, माइटोस, माइटोस अर्थात शक्ति। तो बाबा ने इस मुरली में तीन बार शक्ति शब्द आया है मुरली में, कहाँ कहाँ आया है, शक्ति स्तंभ, शक्ति संपन्न, चार बार हो गया, फिर एक वरदान में हो गया, उसके अलावा तीन बार हो रहा है। नहीं, हिंदी में तीन शब्द है, अंग्रेजी में नहीं, चार, चार बार। एक तो पहले बताया कि जानना मानना और उस पर चलना, अगर इन तीन बातों में चलेंगे तो पहले खुशी आएगी, फिर शक्ति मिलेगी, फिर नशा चढ़ेगा। एक तो ये था, दूसरी जगह शक्ति शब्द कहाँ था, एक तो ये शक्तियां बैठी है शिव शक्तियां, दूसरा था जो लास्ट में दो ग्रुप हैं कर्मयोगी, अगर कर्मयोगी बनकर कर्म करते हैं तो प्रत्यक्ष फल मिलेगा, खुशी और शक्ति। और तीसरा कहाँ था? जब आप अपने को ये समझेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे। कहाँ पर था वो? जब आप अपने को बेहद पाप के बेहद सेवादारी समझेंगे तो आपको बेहद के फल की प्राप्ति होगी, बेहद की खुशी मिलेगी, बेहद की शक्ति मिलेगी, बेहद की सेवा में लग रहेंगे। तो ये तीन शब्द थे। तो कहाँ थे हम? माइटोस में। तो सारी ये शक्तियाँ अपने अंदर महसूस करनी है कि स्वयं सर्वशक्तिवान बाप, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है और मैं माइट हाउस आत्मा हूँ। पूरा ये फरिश्ता माइट ही माइट है, जैसे देह है ही नहीं है। अगर देह है भी है, इसको देखने की आदत है ना, तो इसको भी ये समझना लेना कि ये परमात्म शक्तियों की माइट ही माइट है। इसके अंदर ताकत भरी हुई है सारी, नस नस में जैसे परमात्म शक्तियाँ समाई हुई हैं, तो हम अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे और बीमारियों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो ये था माइटोस। नेक्स्ट कौन सा टाइटल था? विधाता, विधि विधान। हाँ, विधाता भी था, तो हम विधान लिखने वाले हैं, वो तो चलते फिरते कर्मों से हो जाएगा। और कौन सा टाइटल था? दो और है ना, अच्छे अच्छे टाइटल हैं अभी तो। सिद्धिदाता भी। हाँ, एक है सिद्धिदाता। सिद्धिदाता, मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप हूँ। संसार में जो सिद्धि करते हैं वो रिद्धि सिद्धि होती है, उनकी होती है अल्पज्ञ, हमारी है अविनाशी यथार्थ विधि से सिद्धि। ये है कल्याणकारी, वो है उनकी अल्पज्ञ, उसमें नुकसान भी हो सकता है। और हम ब्राह्मणों के मुख से भी अगर ऐसा वैसा शब्द निकलता है तो उसका भी नुकसान कई बार हो जाता है, और ये भी हमने देखा हुआ है। तो हमारे जो मुख से ना ऐसे वैसे शब्द भी नहीं निकले। बाबा ने कहा मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। अगर ब्राह्मण बनने के बाद हमारे में कोई पक्षपात की भावनाएं हैं, किसी को नीचा दिखाने की भावनाएं हैं, तो ये हमारे लिए ही बाधा हमारे पुरुषार्थ में बन जाएगी, दूसरे के लिए नहीं। स्वयं के पुरुषार्थ के रास्ते में अपने रोड़े खुद डाल देते हैं हम। तो कहाँ थे? विधाता, ये कर्मों से हो गया। तो सिद्धिदाता, तो हम सिद्धि स्वरूप, तो अगला फरिश्ता क्रिएट करना, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, जिस कार्य में भी मैं हाथ डालता हूँ हर कर्म में सिद्धि हुई पड़ी है ना। सोचा और बाबा ने क्या, जो सिद्धि स्वरूप आत्मा ही दूसरी आत्माओं को सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं, सिद्धि को पूर्ण करने के निमित्त बन सकते हैं। तो मैं सर्व सिद्धियों से संपन्न आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि स्वयं परमात्मा का साथ मेरा है, उसका हाथ मेरे सिर के ऊपर है, वो निरंतर मेरे साथ में है, उसकी नज़रें निरंतर मुझ पर पड़ी हुई हैं, उसका वरदानी हाथ मेरे ऊपर है, वो निरंतर मुझे CCTV कैमरे की तरह देख रहा है, सब रिकॉर्डिंग हो रही है उसके अंदर। तो ये कितने फरिश्ते हो गए? सात। तो और इसको भी कितना टाइम देंगे बाहर? आधा आधा घंटा। अब मान लो आठ फरिश्तों को आधा आधा घंटा टाइम देंगे हम, चार घंटे का योग आधे घंटे में हो गया, आधे घंटे में चार घंटे का योग हो गया है ना। तो ये था। फिर नेक्स्ट था ये सृष्टि चक्कर। बाबा ने कहा कहाँ बैठ जाओ? सृष्टि चक्कर, सृष्टि के टॉपर। तो फिर बाबा को और मम्मा को थोड़ा सा इशारा देना है ना, तो समझ जाएंगे कि बच्चा आया मेरे पास। तो दोनों के बीच में बैठ जाना, जैसे दादी जानकी जी कहते थे नुमा शाम के योग में, कई बार वो जिक्र करते थे योग के बाद क्लास में, बताते थे कि जैसे मम्मा बाबा को मैं कंधों पर बिठा के विश्व परिक्रमा करती हूँ, तो कितना सुंदर विजन क्रिएट करते हैं वो। तो हमको भी इसी तरह से करना, मम्मा बाबा को भी कंधे पर बिठा लेना या मम्मा बाबा के बीच में बैठ जाओ सृष्टि चक्र के ऊपर। तो वहाँ से हम अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट करें, सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माओं के दुख दर्द दूर हो जाएं, सर्व आत्माओं को सुख शांति मिले, सर्व आत्माओं के रिश्तों आपसी रिश्तों में मधुरता आ जाए, है ना, टेंशन से फ्री हो जाए। अच्छे अच्छे संकल्प करने हैं, क्योंकि हमारे संकल्प जो है ना बहुत स्पीड है। बाबा ने कहा ना आज मुरली में मधुबन में जो होता है मधुबन निवासियों से मुलाकात, तो कितनी स्पीड से जाता है वो? हवा से भी तेज चला जाता है वो। तो हैं जी, हाँ हमको भी नहीं मालूम होता है, बाद में पता चलता है। तो इतना बार हमारे संकल्पों का वाइब्रेशन तुरंत फैलता वातावरण में। यहाँ मधुबन में क्यों सभी अच्छा करते हैं, अच्छा फीलिंग करते हैं, अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं? क्यों? क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे संकल्प बहुत उच्च कोटि के होते हैं। इस संसार से परे के संकल्प होते हैं। कहाँ से आते हैं वो? परम धाम से संकल्प आते हैं वो, कि वो पवित्र धाम है। तो पवित्र धाम से वो जो संकल्प आ रहे हैं वो हमारी बुद्धि को इतना शुद्ध कर देते हैं। बाबा ने कहा ना अपनी बुद्धि को स्थिति के आसन पर सेट करो। हलचल में क्यों आते हो? क्योंकि सीट पर सेट नहीं होते। हलचल का कारण क्या है? यही है, बुद्धि को सीट पर सेट करो। नहीं तो माया अपोजिशन करती है, था ना मुरली में आज, तो अपनी पोजीशन पर हम बड़े थे। बड़ी बाबा ने कहा तुम्हारा मर्तबा सबसे महान है, सबसे महान मर्तबा है, हमारे को संसारी मर्तबे नहीं है। संसारी मर्तबे हम सब के जो मर्तबे उन सब के आगे झुकते हैं संसार वाले, तो कितने ऊंच भगवान ने हम सबको बना दिया। तो कौन सा फरिश्ता चल रहा था, मम्मा बाबा के बीच में बैठ जाने का या विश्व परिक्रमा करना, और उसके अगला है वृक्ष के ऊपर खड़े होने का, है ना। कल्प वृक्ष के दो कर सकते हैं, एक तो जैसे बाबा ऊपर खड़े हैं तो बाबा के साथ में खड़े हो गए, है ना, हाथ में हाथ डाल के या उंगली पकड़ के, जैसे भी अपना बाबा है उंगली पकड़ लो या कंधे पर बैठ जाओ या बाबा को कंधे पर बैठा लो, है ना। जैसे बताया ना दादा बच्चा, दादा और पोतरा का बहुत प्यार होता है, बाप और बेटे का इतना प्यार नहीं होता है जितना पोतरे और दादा का होता है। वो बचपन की, दादा उसको अपने बचपन की बातें सुनाएगा, कहानियाँ सुनाएगा, क्योंकि जब मनुष्य देखा गया जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना तो मनुष्य यंग से दोस्ती ज़्यादा करना लगता है, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है उसको साथ में। तो पोतरा तो नया नया आता है, पवित्र आत्मा होती है, तो दादा का अच्छी तरह से सुन लेता है, हाँ में हाँ मिलाता है, दोस्ती अच्छी हो जाती है उसे। तो हमारा भी दादा भी है तो बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा हमारा दादा भी अर्थात बड़ा भाई भी है और बाबा भी है। तो बाबा के साथ कल्प वृक्ष के ऊपर खड़े होकर हम साकाश दे सकते हैं, और दूसरा कल्प वृक्ष के नीचे जड़ों में, कितना नीचे, बिल्कुल धरती के अंदर, बाबा मम्मा के साथ में इस तरफ, है ना। और ये कितने हो गए, आठ हो गए। फिर एक और कर सकते हैं, ये तो बाबा ने कहा, इसके अलावा हम और क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे विजन। और क्या करेंगे, और योग में बैठ के जैसे सृष्टि चक्र को पकड़ लिया, अभी योग में बैठे बैठे देखना नहीं उसे, मना ऐसे आंखों से अंदर ही क्रिएट करना, नहीं तो लोग बोलेंगे क्या कर रहे इधर ही बैठ गए। तो जैसे सृष्टि को पकड़ा हुआ, और मैं इस सृष्टि को बहुत प्यार करता हूँ, इस सृष्टि के सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सभी आत्माएं पवित्र है, परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं हैं, तो ऐसे उन आत्माओं को अच्छे अच्छे संकल्प देने हैं ताकि उनको थोड़ा अच्छा फील हो, नहीं तो उनको जो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे अनुभव होगी, बाद में थोड़ी होगी, वो अभी अनुभव करानी है उनको, तभी तो इष्ट देव मानेंगे ना। तभी तो बाबा ने कहा ना भिन्न भिन्न रूप से भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए वो आएंगे। गणेश के सामने जाएंगे तो हनुमान का भक्त थोड़ा नहीं जाएगा, वहां गणेश का भक्त जाएगा। तो ये सारे हमारे अलग अलग रूप में हम साधना करेंगे, उसी साधना के आधार पर उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बताया ना बाबा ने, सारे सृष्टि का जो है, सृष्टि परिवर्तन का आधार तो अभी है ना। तो ये कितने हो गए, नौ हो गए। तो पहला कौन सा था, बरदाता। तो बरदाता को कहाँ भेजा था, मंदिरों में। तो फिर बीच बीच में तीसरे फरिश्ते ने देखा कि ठीक ठाक काम कर रहे हैं। फिर दूसरा कौन सा था, विश्व कल्याणकारी। इसको कहाँ भेजा था, हेलीकॉप्टर में बिठाया था उसको। और तीसरा अव्यक्त फरिश्ता, उसको कहाँ भेजा था, उनको जांच करने के लिए भेजा था। और चौथा मास्टर बीज रूप, कहाँ भेजा था, परम धाम। तो वहां, तो वहां कैसे गए थे हम, हमको बाबा ले गया था इधर से, है ना। तो ये चौथा था। पांचवा कौन सा था, लाइट हाउस। तो लाइट हाउस कहाँ छोड़ के आए थे, हाँ। और नेक्स्ट कौन सा था, सातवा माइट हाउस, कहाँ छोड़ा था इसको, कहीं छोड़ा ही नहीं, हाँ उसको अपने पास ही रखा था। और नेक्स्ट वाला कौन सा था, सिद्धिदाता। सिद्धिदाता तो सिद्धिदाता गणेश को भी कहा जाता ना, उसकी कितने फैमिली, गणेश की फैमिली कितनी थी, तीन, कौन कौन, नहीं ठीक ठीक बोला आपने अपने हिसाब से, ठीक बोला, बाकी इनके समझने में फर्क है, ठीक है। तो पार्वती कौन थी, काली थी। देखो कुछ तो चिंतन चलता है ना, बहुत अच्छा, और आगे बढ़े हुए आप। तो ऐसे सबके नाम याद रखने, काली क्या करती है, कौन मारती है, कैसे मारती है, कहाँ बलि चढ़ाती है, किसके सिर काटती, ठीक है। देखो ज्ञान तो है ना अंतर में, तो आपने काली बनकर सिर काटे किसी की, नहीं तो फिर असुर मिले ही नहीं आपको, असुरों की तलाश अब जारी है। हाँ, तो आपके अंदर पांच विकार हैं, वो तो है ही नहीं। देखो कितनी बड़ी बात है, आपने स्वीकार किया और सबके सामने बोला, तो आपका क्रोध आज से खत्म हो गया। तो एक क्रोध है, दूसरा क्या है, किससे मोह है? ये तो उल्टा हो गया। बाबा कहते हैं माताओं को बच्चों से मोह होता है, आपका तो मम्मी से मोह हो गया। और क्या है? तो दो हो गया। तीसरा, तीसरा बस इतने दो ही। तो इन दो ने आपको ये करके रखा हुआ, उलझा के रखा हुआ है। और आप में क्या है? कुछ नहीं है, क्रोध है, दिखता तो नहीं ऐसे। तो ऐसे योग में हमको रमणीकता लानी है ना। तो ये कितने थे? हाँ, ये नौ। तो बीच में जब हम योग में बैठते हैं तो इमर्ज करने, हमने पहले से पूर्व में तैयारी चाहिए सारे दिन में, क्योंकि योग में बैठे वो हम चिंतित ना करते रहें। योग में तैयारी करते करते हमारा टाइम ही ऐसे निकले। तो सारे दिन में मुरली से ऐसे पॉइंट निकाल के, टाइट निकाल के शाम के योग की तैयारी करेंगे। तो योग की जो तैयारी है ना, ये भी एक योग है ये। तो योग हमारा एकदम परफेक्ट होगा, संतुष्टता होगी उसमें, और खुशी रहेगी, शक्ति रहेगी, और नशा रहेगा उसमें साथ में। नहीं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं 6-8 घंटे निकल जाते हैं, फिर हाथ में कुछ आता नहीं, उदास हो जाते हैं बच्चे। तो ये था। फिर था इस मुरली में मूल सिद्धांत कौन से थे, उस पर भी बाबा ने बोले चिंतन करो। पहले तो बाबा ने बताया एक बाप, बाप एक है। उस मूल सिद्धांत के अनुसार क्या क्या होता है? एक तो होती शिवलिंग की पूजा, दूसरा अव्यभिचारी व्यक्ति, तीसरा गॉड इज वन। तो ऐसे हमको ये आगे चिंतन को बढ़ाना। और क्या होता है? एक बाप से हमको वर्षा मिलता है, भाइयों से नहीं। महान आत्माएं अनेक आत्माएं, महान आत्माएं हैं, धर्मात्माएं अनेक है संसार में, लेकिन बाप एक है। वर्षा बाप से मिलता है, भाइयों से नहीं मिलता है। तो वर्षे के अधिकारी भी हम बाप से मिलते हैं, ना केवल सतयुग के लिए बल्कि द्वापर में भी। उसी को याद करते हैं भक्ति मार्ग में, तो भी भगवान से हम अपने पूजा अर्चना करते हैं ना, उसी सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम अपने मन के भाव उनके आगे प्रकट करते हैं, है ना। दूसरा मूल मंत्र कौन सा, सिद्धांत कौन सा था मुरली में? पवित्रता। इससे क्या होता है? ये कहाँ से आवाज आ रही? हाँ, वो पीछे माता जी, इस हॉल में सबसे बुजुर्ग माता जी होंगे, और सबसे एकदम बुलंद आवाज आ रही है। हाँ, तो कलप कलप जो प्राप्तियां हमको होती हैं पवित्रता के आधार पर होती हैं। उसी पवित्रता के आधार पर डबल ताज मिलता है, लाइट का ताज मिलता है। उसी पवित्रता के आधार पर भक्त आत्माएं भी भक्ति पाठ पूजा में विशेष दिनों में पवित्र रहते हैं। तो ये पवित्रता का महत्व है। तीसरा सिद्धांत कौन सा बताया? भक्त लोग उनको पूछते हैं। तीसरा, एक तो या बाप एक है, दूसरा सिद्धांत पवित्रता का, तीसरा कौन सा बताया? नहीं बताया, बताया दो और हैं। बोला धारणा और ज्ञान, ये तो बताया था। चिंतन दूसरों का करना, तो धारणा के सिद्धांत हमारे हैं, है ना। जैसे हम खान पान में कितनी शुद्धि है, तो ऐसे भक्ति मार्ग में भी कितना खान पान में शुद्धि होती है। हाथ नहीं लगाने देते कई भक्त अपने बर्तनों को अपना। कई गुरुद्वारे में जाते हैं तो मुंह में कपड़ा बांध कर वो प्रसाद तैयार करते हैं। भोजन को अगर थोड़ा से प्रसाद गिरता है तो कितना उसको उठा लेते हैं, कितना उसका महत्व है। तो ऐसे धारणाएं हमारी कितनी शक्तिशाली हैं, उन धारणाओं के मूल सिद्धांत भी इस सृष्टि के ऊपर कितना फर्क पड़ता है उसका, उसको अपनाते हैं वो। ऐसे बाबा ने कहा ज्ञान के हर एक ज्ञान के बिंदु के मूल सिद्धांत का मनन चिंतन करो। तो किसने किया चिंतन आज? कि टाइम ही नहीं था। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। वास्तव में जो कहता है टाइम नहीं होता ना, उसके पास सबसे ज्यादा टाइम होता है। तो कौन कौन से सिद्धांत है? क्योंकि जो हमको टीचर ने होमवर्क दिया है, अगर वो नहीं करेंगे तो उसकी कृपा कैसे पर हमारे पर रहेगी? भगवान से कृपा लेना कोई साधारण काम नहीं है। तो कौन से सिद्धांत होंगे? ज्ञान के जितने भी पॉइंट है सारे सिद्धांत ही हैं, जितनी भी धारणाएं हैं। जैसे यहां हम बेहद के वैरागी हैं, बाबा ने कहा तुम हो बनवा में बेहद के वैरागी हो, तो संसार में क्या करते हैं उसके आधार पर वो घरवा छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यहां वहां घर गिस्त में रहते हुए बेहद के वैरागी हैं, तपस्वी हैं, साधना करते हैं। तो यहां साधना करते हैं, संसार में क्या करते हैं? यहां की साधना और संसार की साधना में क्या अंतर है? यहां की साधना का प्रभाव उस साधना के ऊपर कैसे पड़ता है? वैरागी हो जाते हैं। और देखो संसार में भी साधना कितनी कड़ी है। अगर आप जैनियों में देखेंगे उनके आगे तो ये वाली साधना कुछ भी नहीं है, कितने हठी हो गए वो। और हमारा कितना सहज राज योग है, कितना एकदम आसान। यहां तो सारा बाबा ने कहा गुप्त ज्ञान है, साधना भी गुप्त है, ये तो सारे मन के संकल्पों का खेल है। मन को हम अपने चित्त को कितना समय एकाग्र कर पाते हैं, कितना समय ऊपर उसको बड़े प्यार से समझाना है। हमें अपने आप को जबरदस्ती नहीं समझाना, जबरदस्ती परमानेंट चीज नहीं चल सकती है, प्यार से जो चीज है वो परमानेंट चलेगी। तो पवित्रता जो मूल सिद्धांत है उसके आगे फिर दो बच्चे हैं, कौन से, सुख और शांति। अगर उन बच्चों को हमें अपने काबू में रखना है तो बड़े प्यार से अपने मन और बुद्धि को समझाना पड़ेगा। बाबा ने कहा ना, बुद्धि को स्थिति की सीट पर सेट करो, नहीं तो क्या होता है। बाबा ने कहा ना, योग में जाते हैं, बाबा के कमरे में जाएंगे, झोपड़े में जाएंगे या घर में बेड में करेंगे, लेकिन साधारण में मैं योग में बैठा हूं, नहीं, क्रिएटिव माइंड बनना है, अलग अलग, जैसे बताया ना फरिश्ते, ऐसे कितने भी बाबा ने कहा ना, सुमान कितने दिए हैं, अगर लिस्ट तैयार करें तो कितनी बड़ी लिस्ट बन जाए, वो तो हम सब निकाल सकते हैं। तो ऐसे अपने तरीके से नए नए संकल्पों से नए नए विजन क्रिएट करके हमको महसूस करना उसको, तो रमणीकता आएगी हर चीज में। हर दिन नवीनता होनी चाहिए, संकल्पों में नवीनता, दृष्टि में नवीनता, बोल में नवीनता। दृष्टि में नवीनता कैसे होगी, आत्मिक दृष्टि। और जैसे बाबा ने कहा, एक तो हमको आत्मा आत्मा देखना सबको, ठीक है, दूसरा एक है कि शिव शक्ति है और पांडव हैं, और तीसरा देव देव कुल की महान आत्माएं हैं, देवियां हैं, देव हैं, चौथा फरिश्ते हैं, और नंबर वन आत्माएं हैं। और लेकिन ये सारा करने के बाद भी फिर भी दृष्टि जो है ना एकाग्र नहीं होती, चंचल होती, तो फिर क्या करेंगे। मान लो बाबा के सारे पॉइंट जो याद कर लिए और फिर भी दृष्टि स्थिर नहीं हो रही, फिर क्या करेंगे। फिर एक और तरीका भी है, फिर क्या सोचेंगे, अगर कोई बहन दिखती है तो क्या समझना उसको। वैसे बाबा ने बोला नहीं है, तो हमने सोचा था, एक भाई ने बोला जैसे सोचने चुड़ैल है और ये भूत है, तो बुरे विचार नहीं चलेंगे, उनसे डरेंगे। अगर देह को देखने की आदत है तो सोच सकते हैं ना, तो चुड़ैल से तो सभी दूरी बना के रखेंगे और भूत से भी। तो पॉजिटिव वे से, नेगेटिव वे से नहीं, बाकी तो देवियां तो देवियां रहेंगी, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बाबा ने नहीं कहा, ऐसे हमने सोचा था ऐसे ही, तो ये भी कर सकते हैं। तो अच्छा, और क्या मुरली बताया आज मधुबन निवासियों की, तो ये है बाबा ने कहा, ये है मधुबन का विचित्र गुंबज। तो जहां भी हम रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, वो स्थान मधुबन जैसा ही है, लेकिन मधुबन जैसी दिनचर्या, मधुबन जैसे हमारे कर्म हों। बाबा ने कहा मधुबन और मधुबन का बाबा, है ना। तो बाबा ने कहा ना महिमा की, तो महिमा के लिए जैसे बाबा महिमा जो है ना स्मृति दिलाती है हमको, ये महिमा सेफ्टी का साधन है, ये महिमा ढाल है, अर्थात जो भी बाबा हमारी महिमा करते हैं वो हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप से बाबा हमको अवगत कराते हैं कि वास्तव में तुम हो, वो स्मृति दिलाते हैं, तो स्मृति की ढाल हमारी सेफ्टी का साधन बन जाती है। तो ये सारे ज्ञान के अलग अलग जो बिंदु हैं, इनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का, हमको खुद ही नए नए तरीके क्रिएट करने हैं। ये तो एक तरीका, ऐसे बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम देंगे मुरली के ऊपर, आपस में ज्ञान चर्चा करेंगे, सारे दिन में देखना है कि हम कहाँ हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है। टाइम को सफल करना भी बहुत टेढ़ी खीर है, इतना करने के बाद भी मन कैसे भाग जाता है, कोई भरोसा नहीं है मन के ऊपर। उसको समझाना, उसको प्यार से चलाना, उसको अच्छे अच्छे संकल्प लाना, क्योंकि उसको तो बहुत कुछ देखने की आदत पड़ी है ना। तो अपने आप को पढ़ना है, एक है मुरली तो पढ़ते हैं हम, लेकिन अपने आप को पढ़ना है, अंदर बैठ के देखना है कि मैं इस ब्राह्मण जीवन में जब से जन्म हुआ है तब से लेकर मेरे में अभी क्या क्या बदलाव आया है, और कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मेरे पुरुषार्थ में अभी बाधा डाल रही हैं, क्यों नहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, क्यों हमारी निरंतर खुशी जो है वो कम क्यों हो रही है, बढ़ क्यों नहीं रही है, कौन कौन से ऐसे कारक है, कौन कौन से कारण है, और उन कारणों को हम खुद ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। ये भले हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कारणों को खुद ही जानते हैं, आप अपने कारणों को खुद जानते हैं, और काम खुद ही करना पड़ेगा। अपनी गोड़ तो नशा चढ़े, क्लास वाले हम जितने मर्जी सुन लें, बदलाव हमारा होगा अपने मनन चिंतन से, अपनी आदतों को, नई आदतों का निर्माण करने से, अपने आप को स्वयं उमंग उत्साह दिलाने वाले संकल्प क्रिएट करने हैं। गाइडेंस मिल जाएगी, रास्ता तो कोई भी दिखाएगा हमको, लेकिन चलना तो खुद को ही पड़ेगा। रास्ते में जितनी बाधाएं आएंगी पार हमको खुद ही करना पड़ेगा, कोई पार कराने नहीं आएगा, क्योंकि बाबा ने रास्ता तो दिखा दिया, पेपर बता दिया, अचानक कैवरड़ी, बहुत काल का अभ्यास, लेकिन हम कहाँ तक उसको कर पाते हैं, और वो इसमें हमको साथ दे रहा है 24 आवर। बाबा तो हमारे, बाबा ने कहा ना दिल से बुलाओ बाबा आ जाओ, तो बाबा बंधा हुआ है, तो वो तो हमारे साथ में है ही, हम उसका कितना लाभ ले रहे हैं। तो ये जीवन, ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती है, तो ऐसा ना हो कि ये ऐसे साधारणता में बीत जाए। हमेशा हम श्रेष्ठ सुमान की सीट पर सेट रहें, अपना एक अलग से डायरी करें, कुछ मुरली के अलग अलग पॉइंट निकालें, जो नशे वाले हों उस पर चिंतन करें, मनन करें, अलग अलग तरह से कुछ भी चिंतन करो, अच्छा अच्छा चिंतन, सब एक्यूरेट होगा। आप कमलम रख दो, धीरे 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 चिंतन बढ़ जाएगा। सभी ब्राह्मण ऐसे अनुभव करते होंगे, जब हम सभी ज्ञान में चले तो हमको तो पहले ये पता ही नहीं होता था संकल्प क्या चीज़ होती है। हम तो संकल्प उसको समझते थे जो पाठ पूजा में एक तांबे का पात्र आता है उसको, हाँ ये संकल्प करवाते थे पंडित जी। अब हमारे पंडित जी से वास्ता पूरा ही हो गया, अभी उसे बड़े पंडित जी मिल गए शिव बाबा, तो वो संकल्प वो कितना महत्व चला। तो सारी मुरली हमको बार बार रिपीट करनी है, एक सप्ताह जो अव्यक्त वाणी होती है 7 दिन कंटिन्यूस पढ़ते रहो उसको, बीच बीच में चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करो, मुरली को देखो कौन सी लाइन में क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा 200 नाखूनों का जोर लगाना पड़ेगा तो कुछ हमारे हाथ में हासिल होगा। ओम शांति।
खुशियाँ बेपनाह मेरे बाबा मुझको दी, खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। प्यार की कहानी